वही अरमान जिसका शरीर अभी साथ नहीं दे रहा था, आस्था को सामने देखने के बाद उठकर बैठने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई थी। आस्था ने अरमान की आंखों में दर्द उठता हुआ देख लिया था, लेकिन फिर भी अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके खुद पर कंट्रोल किए हुए वहां खड़ी रही। तभी अरमान अचानक धीरे धीरे बैठ गया और अपने पैरों को जैसे ही उसने जमीन पर रखा, अरमान तुरंत लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आस्था अरमान को देख रही थी, लेकिन एक इंच भी वो नहीं हिली। इस वक्त आस्था का दिल पत्थर के जैसा हो गया था। अब तो अरमान काफी हद तक सदमे में था। आखिरकार उसकी बीवी को हो क्या गया है? पिछली बार तो वो दोनों प्यार मोहब्बत से साथ गांव में खूबसूरत पल बिता रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आस्था इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने पति को दर्द में देखकर भी इस तरह से अनजानों की तरह खड़ी हुई है? लेकिन अरमान ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अरमान सिंघानिया दर्द से बहुत पुराना नाता था। अरमान अपने दर्द पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ धीरे धीरे आस्था के करीब चला गया था और उसके हाथ को पकड़कर धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन आस्था ने बेरहमी से अपना हाथ उसके हाथों से पीछे छीन लिया था। तब अरमान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आस्था का खुद से दूर जाना वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक उसने आस्था के बालों को कसकर पकड़ा और अपने माथे को उसके माथे से जोड़कर कहा, क्या हुआ है वाइफी, क्या हुआ है और ये दूरी कैसी, तुम मुझसे दूर क्यों हो? अरमान बड़े ही प्यार से बोल रहा था, लेकिन आस्था लगातार उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। भले ही अरमान उस वक्त काफी कमजोर था, लेकिन आस्था पर उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। आस्था खुद को छुड़ाने में नाकामयाब हो रही थी, लेकिन तभी अरमान ने आस्था के बालों को छोड़कर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे सीने से लगाकर खड़ा हो गया था और उसके कंधे पर किस करते हुए बोला, जानती हो, जब मैं इस अजीब तरह की नींद में सो गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी बात का डर सता रहा था कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा दूसरी दुनिया में तुम्हारे बिना। मैं हर जन्म हर एक पल सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। आस्था ने अरमान को बैग हग नहीं किया था, वो सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। अब अरमान कुछ देर तक आस्था को गले से लगाए उसे किस करने के बाद जब उसे लगा कि आस्था कोई रिस्पांस नहीं कर रही है, तब उसने एक बार फिर आस्था से जानने की कोशिश की, आखिर हुआ क्या है, और वो जोर देकर बोला, बोलो आफत, जवाब दो, जवाब दो मुझे। लेकिन तभी अचानक आस्था की नज़रों के सामने राजवीर का शैतानी तरह से मुस्कुराना याद आ गया था और किस तरह से डेविल किंग द्वारा दी गई मौत कितनी भयानक होती थी, वो सारी खबरें उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूमने लगीं। अचानक उसने अरमान के हाथों को पूरी तरह से झटक दिया था, उसकी ओर नफ़रत भरी नज़रों से देखकर बोली, ये जवाब मुझसे कौन मांग रहा है? हाँ, अरमान सिंघानिया जवाब मांग रहा है, या मेरा पति मुझे जवाब मांग रहा है, या ये जवाब मुझसे डेविल किंग मांग रहा है जिसने ना जाने अब तक कितने मासूम लोगों की जान ली है। मैं जान चुकी हूँ मिस्टर अरमान सिंघानिया, तुम ही डेविल किंग हो और मैं अब तुमसे किसी तरह का कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अब अरमान सिंघानिया, आस्था की बात सुनने के बाद अरमान को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। वो आस्था के मुंह से अपने लिए नफरत भरी बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत आस्था को कंधों पर से कसकर पकड़कर झकझोरते हुए कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? हालांकि अरमान की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी क्योंकि अभी भी वो काफ़ी दर्द में था, लेकिन आस्था की बात सुनकर वो अंदर तक टूट सा गया था। तब आस्था उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, आखिर कैसे तुम इतने मासूमों की जान ले सकते हो? हाँ, कैसे? आस्था जोरों से चीख कर सवाल कर रही थी, लेकिन तब अचानक ज्यादा चीखने की वजह से आस्था का बीपी काफी ज्यादा लो हो गया था और उसकी आंखें बंद होने लगीं और अरमान खुद दर्द में होने के बावजूद आस्था को संभाल लिया था और तेज आवाज में बोला, टाइगर, टाइगर, जो कि खून से सना हुआ दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था और आकाश, सुमित, ध्रुव, वहां राधिका, रश्मि, जो उस वक्त वहां सब मौजूद थे, वो सभी मुंह खोले हुए हैरत से टाइगर को ही देख रहे थे। हालांकि मारिया भी उस वक्त टाइगर के काफी पास खड़ी हुई थी, लेकिन उसने एक बार भी टाइगर के ब्लड को साफ करने की कोशिश नहीं की थी। उल्टा मारिया भी टाइगर का साथ देते हुए दरवाजे के ठीक सामने खड़ी हो गई थी। अब तो अविनाश और अबीर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाकर देख सकें। अब अरमान की आवाज़ सुनने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे। टाइगर के साथ साथ सभी लोग अंदर कमरे में चले गए और जब उन्होंने आस्था को अरमान की बाहों में बेहोश देखा तो अविनाश पूरी तरह से घबरा गया और फटाफट से आगे बढ़कर जैसे ही उसने आस्था को गोद में लेना चाहा, अरमान ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया था और रोबतार आवाज में बोला, इसे कोई नहीं छुएगा। अगले ही पल अरमान ने खुद कमजोरी होने के बावजूद आस्था को गोद में उठा लिया था और टाइगर की ओर देखकर बोला, जितना भी ट्रीटमेंट है वो सब अब सिर्फ घर से होगा, सीधा सीधा घर चलने की तैयारी करो। अब अरमान का हुक्म देने के बाद टाइगर और मारिया अरमान के दाएं बाएं चलने लगे। हालांकि अरमान को एक कदम तक चलना भारी लग रहा था, लेकिन उस वक्त इतना दर्द होने के बावजूद वो सिर्फ आस्था को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा और सब लोग भी अब उनके पीछे पीछे चलने लगे और जल्दी ही वो सब सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुके थे। वहीं जैसे ही सब सिंघानिया मेंशन में गए, मिनी हॉस्पिटल में आस्था को लिटाया गया था। डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। अब डॉक्टर ने आस्था को ट्रीटमेंट करने के बाद बता दिया था कि टेंशन की वजह से थोड़ा बीपी लो हो गया है, लेकिन वो ठीक है और उसका बच्चा भी बिल्कुल सेफ है। तब जाकर अरमान ने राहत की सांस ली थी। मिनी हॉस्पिटल के ठीक एक और बेड तैयार किया गया था जिस पर अरमान सिंघानिया लेटा हुआ था। अरमान और आस्था के बेड में केवल एक जरा सी ही दूरी थी। अरमान आस्था का हाथ पकड़े ही लेटा हुआ था। डॉक्टर अभी लगातार अरमान को ट्रीट कर रहे थे क्योंकि अरमान कितने ज्यादा दर्द में था इसका अंदाजा इस वक्त कोई नहीं लगा सकता था। कितने ही तरह के पेन किलर अरमान को दिए गए थे। तब डॉक्टर ने अरमान को सलाह देते हुए बोला भी था कि उन्हें इस वक्त नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अरमान ने साफ साफ मना कर दिया कि अगर तुमने गलती से भी मुझे नींद का इंजेक्शन दिया तो नींद से जागने के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। अरमान की धमकी सुनकर किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो अरमान को नींद का इंजेक्शन दे सके, इसीलिए मजबूरन उन लोगों ने अरमान को पेन किलर वगैरह ही इंजेक्ट किए थे ताकि वायरस की वजह से अरमान के शरीर को जो नुकसान हुआ है धीरे धीरे उसे थोड़ा बहुत दर्द में आराम मिल सके। अरमान सिर्फ लगातार पेन किलर लेने के बाद इतने दर्द के बावजूद बेहोश पड़ी आस्था के चेहरे को निहारे जा रहा था। वेल, घर आने के बाद सब लोगों को इस बात के बारे में भी पता चल चुका था कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वंशिका उन्हें लेकर पास के हॉस्पिटल में गई है। तब ये बात उन्होंने अरमान को नहीं बताई थी क्योंकि अरमान इस वक्त आस्था को लेकर ही परेशान था। तो तब आकाश ने ध्रुव को इस मामले की जांच के लिए भेज दिया था और बोल दिया था कि दादाजी को साथ में लेकर आएं क्योंकि इस वक्त अरमान को छोड़कर वहां से कहीं नहीं जा सकते थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कब किसकी जरूरत पड़ जाए।
ध्रुव जल्दी ही देव को लेकर पास के हॉस्पिटल में पहुंच चुका था जहां पर वंशिका उसे कॉरिडोर में ही मिल गई थी। तब ध्रुव ने नफरत से घूरकर वंशिका की ओर देखा। ध्रुव की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वंशिका का दिल टूट सा गया था, लेकिन फिलहाल खुद को मजबूत करते हुए बिना ध्रुव के कोई सवाल किए वंशिका ने बताया, दादाजी को हार्ट अटैक नहीं आया है, लेकिन उनके सीने में काफी तेज दर्द हुआ था। अगर ज्यादा देर हो जाती तो शायद उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। फिलहाल उन्हें माइनर अटैक आया है, उनकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर ने एक घंटे बाद उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया है। अब जैसे ही वंशिका ने अपनी बात खत्म की, वो अपने हाथों को आपस में मरोड़ते हुए ध्रुव की ओर देखने लगी, लेकिन ध्रुव ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाकर आगे बढ़कर देव को बोला, बाकी का इलाज दादाजी का घर पर ही हो जाएगा, दादाजी को घर पर शिफ्ट करने की तैयारी करो और जिस डॉक्टर ने दादाजी को ट्रीट किया है उन्हें भी साथ में ले लो। ये बोलकर ध्रुव ने वंशिका पर आग उगलती हुई नज़र घूरते हुए और सीधा दादाजी से मिलने के लिए उनके वार्ड में चला गया था। तब तक देव ने सारी फॉर्मैलिटी कर ली थी और दादाजी को लेकर वो भी अब घर आ गया था। फिलहाल दादाजी की तबीयत पहले से बेटर थी, लेकिन वो उदास से एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। हालांकि ध्रुव ने और बाकी सब ने उन्हें बोला भी था कि उन्हें इस वक्त आराम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त दादाजी का इरादा किसी से कोई बात करने का नहीं था। उनके कानों में अभी तक आस्था की बातें ही गूंज रही थीं। हालांकि उन्हें पता चल चुका था कि अरमान आस्था को ऑलरेडी घर ले आया है। उस वक्त दोनों ही मिनी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन दादाजी ना तो अरमान और आस्था को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो मायूसी से वहां बैठ गए थे। वहीं वंशिका ने एक नज़र सबकी ओर देखा, फिर वो अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब लोगों की आंखों का मुकाबला कर सके। सब लोगों की आंखों में उसके लिए नफरत भरे सवाल थे और वंशिका भी किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, स्पेशली ध्रुव को। वहीं सब लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि आहान और रौनक कहाँ हैं। दूसरी ओर, क्योंकि जिस वक्त रौनक बेहोश हुई आहान ने तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया था और जब लेडीज डॉक्टर बाहर आई उसने जाकर आहान को सीधे सीधे पूछा, उनके पति को दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। आहान बौखला गया और लड़खड़ाती हुई जबान में बोला, ये आप क्या बात कर रहे हैं, उसका पति, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसे समझ नहीं आया कि वो आहान को क्या बोले और फिर वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, तो फिर आप कौन हैं? अब आहान को समझ नहीं आया कि वो अपना रौनक के साथ क्या रिश्ता बताए। फिर उसने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, वो मैं उसका दोस्त हूँ। तब डॉक्टर बोली, देखिए सर, जो मैडम अंदर मौजूद है वो माँ बनने वाली है, शी इज़ प्रेग्नेंट।